नमामि सची सुत गौर वरं प्रणमामि सची सुत गौर वरं प्रणमामि सची सुत गौर वरं सकृतं नव प्रेमरसं नवयुतं नवनीत सुचं नव सकृतं नव प्रेमरसं नवधा विलसत् शुभ प्रेममयं नवधा विलसत् शुभ प्रेममयं प्रणमामि सची सुत गौर
Thank you. Thank you. श्री श्री सचिताष्टकम की जय। गौर हरि प्रमाण उसको ही बोलना है। इति श्री सचिताष्टकम समाप्त श्री कृष्णार्पणमस्तु शील सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा रचित नाम और कोई भागवत अष्टक जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
Thank you.
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की निद्रा प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद इष्ट भाइंद्रेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री भगपाल भट्टदास रघुनाथ षड़ गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्रीगिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की पिताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद पंचविंश अध्याय श्लोक संख्या 21। पंच शीर्षाहिना गुप्तम् प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाण ऋषभ अप्रौढं कामरूपिणीम्। पंच शीर्षाहिना गुप्तम् प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाण ऋषभ अप्रौढं कामरूपिणीम्। पंच शीर्षाहिना गुप्तम् प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाण ऋषभ अप्रौढं कामरूपिणीम्। पंच पांच शीर्षा शीर अहिना सर्प द्वारा गुप्तां रक्षित प्रतिहारेण अंगरक्षक द्वारा सर्वतः चारों ओर अन्वेषमाणां खोज करती हुई ऋषभम पति अप्रौढ़ाम भोली भाली किशोरी कामरूपिणीम अत्यंत आकर्षक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रखित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में पांच विकार के वायु प्राण अपान व्यान समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया। प्राणों के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती है। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए। इसलिए यहाँ अप्रहुणाम या तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंश नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो ये पुरंजन उपाख्यान जो चतुर्थ स्कंद में हम प्राप्त करते हैं जिसमें महाराज प्राचीन बरही को सबसे सफल प्रचारक द टॉप मोस्ट सेल्फ रियलाइज्ड एंड सक्सेस मोस्ट सक्सेसफुल टीचर नारद मुनि उनको प्रचार करने के लिए गए हैं और उनको ये काल्पनिक कहानी बताते हैं। वो तो समझ रहे होंगे शायद कोई स्टोरी बताते हैं। स्टोरी क्या, ये उनका मना कल्पित प्रसूत कहानी था। इस कथा के द्वारा उनने प्राचीन बरही को ऐसे ऑपरेशन किए वो वैराग्य लेकर घर छोड़ के चला गया। अभी उनके बच्चे गए थे तब से वापस ही नहीं आए थे। बच्चे वापस आएंगे उनको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, प्रॉपर्टी ओनरशिप दूंगा, फिर कुछ करूँगा, कर रहा था सर मैं अब यज्ञ आदि कर रहा था अपना। लेकिन नारद जी सो पावरफुल, अभी बच्चे घर में नहीं आए ऐसे कहानी सुनाए ताकि राजा बिल्कुल वैराग्य व्रत धारण करे और चल पड़े। अपेक्षा भी नहीं किया पुत्र के यही से। तो केवल फिलोसफी बोलने से नहीं चलेगा, फिलोसफी को ऐसे कहानी के द्वारा ऐसे कथा के द्वारा प्रस्तुत करें ताकि जो जिसको आप बताते हैं वो इसको पूरा पूरा ग्रहण कर पाए, पूरा असर उसके ऊपर पड़े। हाँ, हम जैसे भौतिक जीव हैं बीमारी तो है ही है, हमको दवाई दिया जाए दवाई कड़वा होता नहीं खाएंगे, नहीं थूक करके फेंक देंगे, उल्टी कर लेंगे, नहीं खाएंगे। तो अगर उसमें कुछ फ्लेवर डाल करके और शहद अगर मीठा डाल करके इसे बनाते हैं तो चाट कर खा जाएंगे। लेकिन हम खाते हैं फ्लेवर और मीठा के लिए, लेकिन दवाई भी उसके साथ है, वो काम करता है और दवाई अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक, इस प्रकार नारद जी वो जानते हैं इस बात को। वही से कथानक के द्वारा आपने जो विषय वस्तु को प्रकाश करते हैं ताकि बिल्कुल प्रभावित होते हैं। अंत में बताएंगे इस स्टोरी का अर्थ क्या है। अब तीन चार अध्याय बता बता देंगे, अध्याय लास्ट में बताएगी ये जो कहानी है और कोई नहीं है, ये तो आप स्वयं हो। अरे मैं हूं। तो ये कहानी पुरंजन प्राचीन वर ही बहुत सारा यज्ञ करते थे। इतने यज्ञ पशु बलि देकर करते थे क्योंकि उनको स्वर्ग भोग की इच्छा था और कर्म कांड में ही बताया गया है ये सब करने के लिए। तो नारद जी ने सबसे पहले आकर के उनको रोके, बोली क्या कर रहे तूने, नहीं तो शास्त्र में बता गए आप तो बताओ। तो उन्होंने नारद जी सबसे पहले उनको देखा, बोले देखो ऊपर में जितने पशुओं को तूने बलि दिया यज्ञ में वो सब तैयार हैं तुझे मारने के लिए। और डर गया, घबरा गया। तब बताने लगे, बोले देखो एक बार की कथा मुझे सुनाता हूँ, सुनकर तो समझ में आएगा। एक बार एक राज्य था, उस राज्य में राजा थे जिनका नाम था पुरंजन, पुरंजन महाराज। पुरंजन महाराज अब सुस्त सबल शरीर था और अपने जवानी समय में उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे थे, रेसिडेंट ढूंढ रहे थे, रेंट पे लेंगे या क्या करेंगे पता नहीं, जो भी वो ढूंढ रहे थे। और ढूंढते उनको उनके मन के मुताबिक उनको मकान नहीं मिल रहा था। अब ढूंढते 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 पूरे विश्व ढूंढ गए, आकर के भारतवर्ष में हिमालय के दक्षिण पार्श्व में, अब भारतवर्ष को देखे, हमारा उत्तर में हिमालय, हम दक्षिण पार्श्व में, भारतवर्ष में पहुंचे। पहुंच करके ये कहा गया कि ये कर्मभूमि है, एक्चुअली कर्मभूमि ही शरीर है, मनुष्य शरीर ही कर्मभूमि और कोई शरीर कर्म जोनी नहीं है। ये जितने प्रकार 84 लाख प्रकार के डिजाइन के शरीर है वो सब कोई काम नहीं करते हैं, वो तो भोगते हैं, करते हैं और भोगते हैं बस। और काम तो हम ही करते हैं, एक मनुष्य शरीर में इतने काम कर लेते हैं कि अनेक अनेक जन्म तक भोगते रहेंगे। हाँ। बाकी ये सब तो भोगजनी है, कर्मजनी कर्म। तो इसलिए कर्मजनी में आ करके इस कर्मलोक धरती पर आ करके अब जब देखे कि बड़ी सुंदर स्थान था, नारद जी तो वर्णन करते हैं कितने सुंदर बगीचा था, उपवन था, झरना था, इतने सुंदर उद्यान के, मनोरम उद्यान के वर्णन करते हैं, सुंदर सुंदर पक्षी अपने रब करते हैं, बाल बहती है, फूल फल, इतने सुंदर उद्यान का वर्णन करके फिर उद्यान में वो भ्रमण करने लगा राजा ने। इज सो नाइस प्लेस। घूमते घूमते अब सुगंधित वायु आता होगा, पुष्प की सुगंध आता होगा, आप बिल्कुल डमकियार होकर अकेले घूमते होंगे, मालिक की तरह तो है ही जवानी में भरी। और इसी समय में ठीक उसके साथ को मैच करके उन्होंने देखा एक सुंदरी तरुणी आ रही है। वाह क्या मैचिंग। तो वो उन्हीं की ओर आ रहा था और उनको उन्होंने देखे, महाराज प्रजन देखे कि उनको देखने से लगा हे तो अति रूपवती युवती भी है, लेकिन उनके जो चाल हाव भाव चाली चलने से लगता था कि सीज इनक्वायर मैंने फाइंडिंग आउट मैंने वो उसे ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है एक पति, पति के तलाश में थी। इस श्लोक में ये कहा गया अन्वेषमाणाम ऋषभम, ऋषभ मतलब पति, अन्वेषण का अन्वेषण में है, अभी उनका अन्वेषण जारी है, ढूंढ रहा है। पर वो भी अन्वेषण में थे, रंजन महाराज भी कौन कहीं थे, अब दोनों का इंक्वायरी वही एंड होगा। वो भी इंक्वायरी में था, इंक्वायरी कर रहे थे, वो भी इंक्वायरी कर रहे थे, दोनों अन्वेषमाण ऋषभम। अब जिस प्रकार तलाश में थी क्योंकि अनुसर कर रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल युवती थी, अप्रौढ़ाम बिल्कुल भरी युवती अवस्था में थी, और केवल युवती नहीं थी, और क्या विशेषण था उनके पास, ना काम रूपिणी, काम से प्रभाव से पूरी पूरी प्रभावित थी, इसलिए इस काम पूर्ति के लिए उन्होंने ढूंढ रहे थे ऋषभम। तो इस प्रकार के कथा कुछ नारद जी ने बताते हैं, आगे और बताते जाएंगे। तो एक जो एक स्त्री को देख रहे हैं पुरंजन महाराज, और यहाँ तक के श्लोक में कहा गया कि ये जो स्त्री आ रही थी वो अकेली नहीं थी, उनके साथ बॉडीगार्ड थे। हाँ, अकेले नहीं घूम रही थी। हाँ, कौन सा बॉडीगार्ड थे? बाप रे, पंच शीर्षा अहिनाम गुप्ता, एक पांच फन वाले सर्प था। अरे बाप रे बाप, सर्प देखने से घर जाए, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड थे वो ऐसे थे खतरनाक, पांच फन वाले सर्प थे। पंच शीर्षा अहिनाम गुप्ता प्रतिहारेण, वो उनके बॉडीगार्ड थे, उसको चारों तरफ से रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा देते थे। तो इसे पता चलता है कि कोई साधारण ही नहीं, बहुत प्रोटेक्टेड है उन्होंने। अब उसके पहले श्लोक में शायद आप पढ़े होंगे, यहाँ तो बॉडीगार्ड एक सर्प था पांच फन वाला बताया गया था जो उनके अंग रखी थी, लेकिन पहले बताया गया कि वो 10 सोल्जर उनके साथ आए थे, और 10 सोल्जर का सैकड़ों हजारों फॉलोअर और थे। नारद जी समझाएंगे कि एलेगोरी की क्या मतलब है, कि जो 10 थे, ये जो कामिनी है, स्त्री है, ये और कोई नहीं, वो तो साक्षात बुद्धि है। बुद्धि को पुरंजन इस पूर्व में नवद्वारे पूरे देही, जो 9 गेट वाला पूर्व देखा उन्होंने, ये शरीर ही नवद्वार पूरा है, इस शरीर में 9 गेट है। इस शरीर में जब जीवात्मा आता है, वो आकर के शरीर में सुस्त स्वरूप को रहने लगता है, तब भोग उन्मुख होता है, भोग करना चाहता है। भोग करने का माध्यम है इंद्रिया, इंद्रिया के द्वारा तो भोग सुख प्राप्त कर पाएगा। तो हमारे पास इंद्रियां हैं 10, ले दे करके 5 में इंफॉर्मेशन लेंगे और 5 में काम करेंगे, एक्टिवेट करेंगे उसको, है ना? नहीं, एक्टिविटी करेंगे, 5 में काम में लगेंगे और 5 में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे उसमें? वो 5 चीज को पाने के लिए, जो 5 विषय है उसको भोगना है। वो 5 विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसी को भोगने के लिए कैसे भोगूं, उसके लिए बुद्धि का जरूरत है। बुद्धि के द्वारा सैकड़ों प्लानिंग करेंगे, ना जाने कितने कितने विचार विमर्श होगा, कैसे उनको प्राप्त किया जाए, भोगा जाए। इसी को कहते हैं सैकड़ों सैकड़ों फॉलोअर हैं इन 10ों के, कितने कितने इच्छाएं हैं उनके, कामनाएं हैं। तो अभी इस प्रकार से जब भोग मृत्यु में जब आते हैं, तो यहाँ बुद्धि ने बताया गया कि उनके एक सर्प था, वो एक सर्प बोलते हैं कि बुद्धि हमेशा जीवित रहती है और कुमारी अवस्था में रहनी चाहिए उसको, तो इसलिए प्राण चाहिए। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, प्राणहीन हो जाए कोई पसंद नहीं करेगा, एक मिनट में बोले कपड़ा ढाको उठाओ उसको, तो प्राण होना चाहिए। प्राण और चेतना के बिना कितने सुंदर खूबसूरत रूप क्यों ना हो तो कोई काम की नहीं। तो इसलिए वो प्राण टिका कैसे ना, प्राण 5 प्रकार के, प्राण एक वायु में चलता है, प्राण वायु, उसमें मुख्य 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण वायु होते हैं, उसमें प्राण वायु होते हैं 5, प्राण अपान समान व्यान उदान, ऐसे 5 प्राण वायु में ये बुद्धि टिकता है, उसी के द्वारा वो चलता है आगे। प्राणहीन होने से बुद्धि पर काम नहीं करेगा। अब जा करके उन्होंने आपने विषय को भोगना चाहता है, विषय भोगने के लिए उनको चाहिए चेतना। चेतना के बिना बुद्धि कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार सुंदर स्त्री भी एक सुंदर पति के बिना यूजलेस। तो इसी के लिए ये कथा नारद जी ने बताते हैं कि बुद्धि भी इतने शक्तिशालिनी कामरूपिणी सब कुछ इतने सब प्रोटेक्टेड अब पंच शीर्ष ही के द्वारा होकर भी वो ढूंढ रही है, क्योंकि अपने काम मनाने के लिए एक ऋषभंग चेतना चाहिए उसको, जीवात्मा के बिना कैसे करना चाहिए। तो इस प्रकार नारद जी ने इस श्लोक में ले दे करके बुद्धि के क्रिया के ऊपर में बल दे रहे हैं। किस प्रकार बुद्धि को हम अगर सदुपयोग करें तो हमारा कल्याण हो सकता है, और बुद्धि को अगर दुरुपयोग केवल भोग के लिए करें तो हमारा कैसे दुर्गति हो सकता है। ये मनुष्य शरीर, भागवत में कई जगह में कहा गया, मनुष्य शरीर का एकमात्र उद्देश्य है तपोदिव्यम पुत्र का, तपस्या के लिए होना है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि भोग करने के लिए तो नाना जोनी अवेलेबल है। इस प्रकार के सुख, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए अगर मनुष्य शरीर इंद्रिय सुख के लिए बनी होता, हम सुख भोगना चाहते हैं, हर तरह से प्लानिंग करके योजना करके व्यवस्था करके इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, तो फिर हम इसके लिए सबसे फेलियर है, नालायक है। क्योंकि जो सुख भोगना चाहते हैं वो भोग प्राप्त होने से पहले हम डर जाते हैं, भोगे रोग भयम, अरे रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, भोगने से पहले मन में आता है और होता भी है, रोग होता भी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन रोग होते हुए भी भोग नहीं छूटता, लेकिन डर तो रहता है। इसी के लिए फैमिली प्लानिंग क्या क्या सब करते हैं, डर के मारे, और क्या है। लेकिन पशु जोनी में, पक्षी जोनी में जाओ, उनको कोई डर है भोग के लिए? बिल्कुल बीच बाजार में रोड के ऊपर कोई शर्म नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनते, कुछ नहीं, हु केयर्स। अगर संतान पैदे भी होंगे, अरे एक दो डजन बच्चे पैदा हो जाए, कोई चिंता थोड़ी है। कोई उनको मेंटेनेंस देना है ना, कपड़ा सिलाना है ना, कोई स्कूल में दाखिल करना है ना, क्या देना, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। वो अपने गटर में जाएंगे, अपने समान, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो भोगने के लायक तो ये शुकर कुकर जो नहीं सो बिफिटिंग है, कि इसमें कोई चिंता कोई टेंशन कोई डर नहीं है उसमें, ना समाज के भय है, ना लोक भय है, ना रोग भय है, ना कोई मेंटेनेंस का भय है, ना कोई दबाव है किससे, किसी प्रकार का नहीं, अरे बेदम। लेकिन मनुष्य जोनी में कितने प्रकार के अड़चन है इस भोग में, क्योंकि मनुष्य शरीर से भोग के लिए बना ही नहीं गया। अगर भोगना चाहते हो तो शुकर कुकर जोने में जाओ ना, सर फ्री फोरम भोगते रहो, फ्री फोरम। हाँ, इस शरीर में भोग नहीं, तप के लिए बना गया, इसमें तपस्या करना चाहिए। बुद्धि को भोगोन्मुखी ना करके तपोन्मुखी करना चाहिए, ऐसे छूट नहीं देना चाहिए, भोगोन्मुखी नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने भगवद गीता में तृतीय अध्याय में भगवान को पूछा, हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापचरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। हे कृष्ण, हम कोई नहीं चाहते पाप करने के लिए, बदनाम होने के लिए, कोई चाहते हैं ना, सब अच्छे बनना चाहते हैं, सब अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, पापी नहीं बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन नहीं चाहते हुए भी जैसे कोई फोर्सफुली जबरदस्ती हमसे गलत काम कराता है, पाप कर्म कराते हैं, वही हम चाहते भी नहीं, फिर से हमारे क्यों करा जाते, बड़ाद भी नियोजित अनिच्छिन्न भी वार्ष नहीं है, वार्ष नहीं चाहते हुए मेरे से करा जाता है गलती काम। भगवान बोले, यू आर राइट, होता है सबके लिए। बोले, क्यों, हु इज दैट फेलो, कौन मेरे से जबरदस्ती कराते, मैं तो नहीं चाहता हूं करना। बोले, आप नहीं जानते कौन कराता है,
बोले आपके सबसे बड़े एनिमी जो है उसको जानो। काम ऐसा क्रोधो ऐसा विधि एन यह बैरी ना, यही आपके बैरी है। ये पार्टी वो पार्टी आंटी पार्टी ये सब कोई आंटी नहीं है। असली आपके जो महान शत्रु है, आपके हाथ धोकर जो पीछे पड़े हैं, और कोई दूसरे व्यक्ति विशेष नहीं है, वो है काम एंड हिज यंगर ब्रदर। क्रोध को कामानुज कहा गया, काम के अनुज है वो, और काम के अग्रज कौन है? लोभ। तो बोले काम ही ऐसा, उसको जानो वही है, वही बैरी महा असना। बोलते कि उस काम को बोलो कि पूर्ति कर दो, कुछ फीड दो, कुछ दो उनको, चाहे जो चाहिए उसको, सारे संसार के समस्त द्रव्य दे दो, उसका पेट नहीं भरेगा। महा असनम, इतनी भूखा है वो, एक संसार क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य दे दो तब ना पेट भरे उसका। काम कभी बुझता नहीं, कभी पूर्ति नहीं होता काम का, नहीं भरे भरे। इसलिए महा असन कहा। और इसे काम बोलेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे इस थोड़ी बरे। भगवान बोलते हैं कि काम रूपेण कुंती ज्ञानी न नित्य बैरिणा। बोले कुंती है अर्जुन, ये काम जो है ना बाकी लल्लू पंजू के पास नहीं जाता, वो तो बेचारे वो केवल बुद्धिमान के फेर में है। हाँ, ज्ञानी ना नित्य बैरिणा, वो ज्ञानियों के पास जाता है। बोलते उनके पास जाकर तो ऑलरेडी आउट है, उनके पास जाकर क्या करना, अगर हमें करना है उनके पास जाना है, तो जो अपने ज्ञानी समझ रहे समझदार उन्हीं के पास जाता है, काम चैलेंज उनसे लेता है, जाकर टक्कर लेता है। ज्ञानी ना नित्य बैरिणा, हमेशा उन्हीं के चक्कर में रहता है ज्ञानी। बोले कैसे ज्ञानी को फंसाता है? बोले क्या बताऊं, उनका फंसाने का तरीका तो सुपर टेक्निक है। हाँ, बोले कैसे? बोलते हैं कि काम ऐसे प्रभावित करता है जीव को, अलग अलग प्रकार जीव को। उदाहरण देते हैं भगवान ने, बोलते जथा लोयन आवृत कर, सबसे पहले क्या जथा माला क्या श्लोक है वो, सबसे पहले जथा दर्श मड़े नच नहीं, जथा आदर्श मतलब जैसे ऐना में गंदगी लगता है, एक दूसरा है, दूसरा क्या है लोने के उथाड़ में आता है, हाँ नहीं फायर उम धूमे न ब्रियते बन्ही, सबसे पहले धूमे न ब्रियते बन्ही जथा दर्श मड़े नच था लोन आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। वो ऐसे ही आवृत करता है, ढांकता है ज्ञानियों को, ढांकता है। कैसे ढांकता है? बोले सबसे पहले अटैक होता है, जो बोलते हैं हम सतगुणी हैं, बिल्कुल फलाहार करते हैं, बैल सब्जी केवल खाते हैं, ऐसे करते हैं, अपने खूब होशियार में रहते हैं, उनके पास कैसा जाता है सतगुणी वालों के पास? बोलते धूम है ना ब्रियते बन्ही, बन्ही मतलब आग, धूम मतलब धुआं, जिससे आग रहता दिखाई नहीं पड़ता, धुआं दिखाई पड़ता है। जब धुआं दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यहाँ आग, आग के बिना धुआं हो ही सकता क्या? आग ना हो तो धुआं हो ही नहीं सकता, आग है इसका प्रमाण है कि धुआं, लेकिन आग दिखाई नहीं पड़ता, ढांका हुआ है, बिल्कुल आवृत है धूम्र के द्वारा। जब धुआं के द्वारा आग ढंकी रहती है, केवल धुआं दिखता है, तो उनको क्या सहायता चाहिए आग प्रकट होने में? एक फूंक मार दो, एक सुलग थोड़ी सी हवा चले, आग प्रकट हो जाए, है ना? नहीं आप देखो जाके धुआं उठता है, एक फूंक मार दो झप करके हवा आग उठ जाएगा। अब आग प्रकट होने से धुआं चला जाएगा। वो इस प्रकार ढांक के रखता है। इदम इस काम ने ऐसे व्यक्तियों को भी ढांक कर रखता है, धुएं जैसे ढांक, बिल्कुल देखने से बड़ा भयावह धुएं, बिल्कुल बहुत सारे हैं ढांका, लेकिन उनको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। उनसे बचने के लिए उनको थोड़ा सा हवा चाहिए, फूंक मार दो तो हवा आ जाए तो बच जाएंगे अपने, प्रकट हो जाए। बोले उनके लिए तो इतने कम परिश्रम में प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड ग्रेड में है, रजोगुणी है, उनको थोड़ा और ज़्यादा परिश्रम चाहिए, उनको प्रीचिंग करने के ज़्यादा परिश्रम के। वो कैसे बोलते, जथा आदर्श मले न चा, जैसे एक मिरर मैला में ढंग गया है, धूल बैठ गया उसके ऊपर, जम गया है, तो दिखा नहीं, तिलक करते समय मुंह नहीं दिखता, तो उसको फूंक मारने से ठीक हो जाएगा? अरे कितने फूंक मारो नहीं होगा, फैन के नीचे रखो तो बिना आ जाए। तो इसके लिए एक गीला कपड़ा ला करके थोड़ा पोछा लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, तब जा करके वो दिखाई पड़े आपको क्लीन हो। तो रजोगुणी व्यक्ति को थोड़ा और कसरत चाहिए, गीला कपड़ा लाओ, थोड़ा पोछा लगाओ, फिर सुखा में थोड़ा पोछो, फिर दिखेगा आपने आप, फिर चला जाएगा आप जो ढंग अवृत करके घेर कर रखा है, चला जाएगा। बोला लेकिन आप जैसे रजोगुणी है ना, हम जैसे हैं राजा को कहते हैं, तो उनके लिए तो उदाहरण दिए, जथा लोयन आवृतो गर्भ, जैसे गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में रहता है, उसको गर्भ इतने थिक में मोटा चमड़ा गर्भाशय के अंदर रहता है, वो बिल्कुल आवृत ढांक कर रखता है कवर करके, उनको फूंक मारने से निकल जाएगा क्या, थोड़ा कपड़ा गिला करके घिसने से? नहीं, वहाँ तो सी जाए, वहाँ तो ऑपरेशन चाहिए पक्का, बाकी कुछ काम नहीं करेगा, सीधा ऑपरेशन चाहिए, ऑपरेशन काट पीट। तो बोलते हैं कि इस प्रकार ऑपरेशन चाहिए काम से बचने के लिए। तो अर्जुन सुनकर बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, इतने महाशत्रु बोलते हैं मैं उसको उड़ा दूंगा, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मुझे क्या समझ रखा है, मुझे बताओ कृष्ण, मुझे बता दो उनका एड्रेस, उनका आईडी बताइए, मैं आज ही हमला करता हूँ उसको, कहाँ बैठता मुझे बताओ, मैं उसको देख नहीं पा, उनका डेरा कहाँ पे है। तो बोले कोई बात नहीं, आप वहाँ योद्धा हो, उसको लड़ना तो, हाँ बिल्कुल लड़ूंगा उसके साथ। बोले ठीक है, बता देता हूँ उनका एड्रेस, लड़ो। कहाँ एड्रेस बताए? मन बुद्धि इंद्रियाणी अस्य अधिष्ठानम उच्यते। बोले तीन जगह में टेंट हाउस लगाया उन्होंने, एक जगह पर नहीं बैठा, अब इसी इसी जगह पर बैठा है, आप मारो तो मारो, देखते गन उठाओ फायर करो, किसको? पहले एड्रेस क्या है? मन इंद्रिया नहीं, मन बुद्धि इंद्रियाणी, सबसे पहले मन होगा, इंद्रियाणी मन बुद्धि, तो सबसे पहले इंद्रिया में बैठा, अपने इंद्रिया को कैसे मारेगा? गोली तो मारते हैं सब आउटवार्ड जाता है, वो तो इनवार्ड करना पड़ेगा, बंदूक इस तरफ करके लगाओ बाण, अरे कैसे मारो ना, तो इंद्रिय में बैठा है, कैसे टारगेट करें? आपने इंद्रिय में बैठा है काम, उसके बाद सेकंड टेंट है उसका मन में, और थर्ड बुद्धि में, बिल्कुल उसके ऊपर एक के ऊपर एक बैठा है। इसलिए इस प्रकार कहते हैं कि ये जो स्टेज एक के ऊपर एक है, सबसे पहले स्थूल पदार्थ से बढ़कर कहे इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रिय और से बढ़कर है, इंद्रियभ्य परंग मन, इंद्रिय से भी और हाई स्टेज का हायर रैंक है मन, मनसस्तु पराबुद्धि, मन से बढ़कर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी बढ़कर के आप हो, जो जीवात्मा है बुद्धि से भी बढ़कर है, तो बुद्धि को काम में लगाना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्धा, बोले इसलिए अगर तू लड़ना चाहते हो, कैसे बुद्ध, अर्जुन घबरा गया, बोले कैसे मारूं भाई उसको, तीन जाए इसी जगह में बैठा है, मैं तो लड़ाई नहीं कर सकता उनके साथ। बोले यही तो बात है, तो बड़े बड़े बात करते उनके साथ। बोले फिर क्या किया जाए? बोले उपाय यही है, एक साथ में हमला मत करो, धीरे 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 जीतो। कैसे धीरे धीरे? सबसे पहले नियम्य आदो इंद्रियाणी, सबसे पहले इंद्रिय संयम करो, इंद्रिय को नियमन करो, रेगुलेटेड लाइफ, एक रेगुलेशन में इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, सब नियम बता गया, इस नियम से साथ रहो, नियम से रेगुलेटेड लाइफ जियो। इंद्रिय को नियमित करने के बाद में क्योंकि इंद्रिय के ऊपर मन बैठा, मन ने देखा कि मेरा चक्का नहीं चल रहा है, क्योंकि मन जो है स्टेयरिंग है, वो इंद्रियां चक्का है, और स्टेयरिंग इधर मुड़े चक्का दूसरी तरफ जाए तो स्टेयरिंग क्या करेगा, स्टेयरिंग फेल हो गया। तो सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो तो मन काबू में होगा। जब मन इंद्रिय उसका बात नहीं मानेंगे, मन थोड़ा काबू में आएगा, तब बुद्धि को एक्टिवेट करो। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा काम रूपम दुरासदम, इस प्रकार बुद्धि के उपयोग करके जो महा दुर्जय शत्रु काम को जीतने के लिए प्रयास करो। यहाँ बुद्धि में इस प्रकार उपयोग करना चाहिए। अगर बुद्धि को इस प्रकार काम को जीतने के लिए प्रयास ना करके भोग उन्मुखी काम को भोगने के लिए प्रयास करो, तब पुरंजन की जो स्टोरी बिल्कुल नारद जी बताते हैं ऐसे हाल ऐसा। तो इस प्रकार जो बुद्धि है, बुद्धि को हमेशा चौकन्ना रखना चाहिए कि बुद्धि डिसीजन मेकिंग है, निर्णय आत्मिका। कोई डिसीजन लेना हो तो बुद्धि के द्वारा डिसीजन लेना होता है, संकल्प मैं ये करूँगा डिसाइड। बाकी इन्फॉर्मेशन तो मन देता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग मन नहीं करता, बुद्धि करता है। तो डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से पुरंजन जैसे पुरंजनी के चक्कर में आकर के और ऐसे 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 पूरे आयु उनके शौर्य उनके शक्ति सामर्थ्य सब कुछ खो बैठता है, हताश हो जाता है। तो इस प्रकार भोग उन्मुख प्राणी के दशा को इस तरीका से प्रेजेंट करते हैं नारद जी। एक बार नारद जी स्वयं भी इस प्रकार इसी इंसिडेंट में फंसे थे। घटना आता है रामायण में, एक पाठ के वर्णन आता है कि उन्हें एक बार जो तपस्या कर रहे थे, तपस्या बैठे थे, तपस्या में बैठने से तो इंद्र को तो टेंशन आता है, कोई तप करता है कहीं भी टेंशन आता है तो अपना वो एक्टिवेट हो जाता है, वो भेजता है सब अपना सोल्जर को, तपस्या क्यों करता है, मेरे चक्कर में फंसा तो नहीं। तो भगवत कृपा से नारद जी, इंद्र ने जो भेजा था अपने सब काम आदि को, वो बच गए उनसे। जब बच गए नारद जी ने देखे काम देवता हार गए, काम अरे इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, खुश हो करके वो जा करके अपने पिताजी के पास सबसे पहले गए, ब्रह्मा जी के पास। बोले डैडी आज का रिपोर्ट पता है ऐसे ऐसे क्या होने। ब्रह्मा जी बोले बेटा ठीक है बेटा, भगवत कृपा से कर लिया, लेकिन ज़्यादा गर्व मत होना, ऐसे मत समझना है पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, मैं इतने बड़े अचीवमेंट किया आप उसने। बोला पापा ऐसे हैं बोलते नहीं कुछ। भाई साहब के पास गया, भगवान शंकर है उनके भाई, बोले भाई साहब देखिए ऐसे ऐसे में किया हूँ, और बड़े खुशी होकर के बोले हूँ। शंकर भगवान बोले देखो नारद जी अच्छा है, बोले आपने काम को जीता था भाई साहब, जला दिया उसको गुस्सा में, जलाया नहीं इसी भाग गए। आप तो काम देव को जला दिया था, लेकिन मैं बिना जलाए जीत गया। शंकर जी बोले हाँ आप है जोरदार, लेकिन ठीक है मुझे आकर बताओ, और किसी को नहीं बताओ, एडवर्टाइज मत करो उसका। तो बोला क्या होगा, ये मेरे शीर्षा करते हैं, देखो मैं इतने हाई रैंक में पास कर गया, मेरे पीछे पड़ते हैं, बताऊँ क्यों नहीं बताऊँगा, बताऊँगा। तो शंकर जी बोले भाई देखो मैं तुझे बता रहा हूँ, तू बताओ भले जिसको बताओ, लेकिन देखो ठाकुर जी को नहीं बताना ये बात है, मैं तो उनकी बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा। आप बोले दुनिया क्या जाने, बताऊँगा तो उनको बताऊँगा। और सीधा वैसे डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग किए वैकुंठ, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर वैकुंठ पहुँचे। अब पहुंच करके सीधा भगवान को इन्फॉर्मेशन देने लगे, आप प्रभु ऐसे हैं ऐसे, भगवान बोले अरे आप जैसे भक्त ये क्या है, तो तुच्छ है काम, तो ऐसे हार जाएगा, आप जैसे भक्त के सामने कौन क्या कर, आप जैसे भगवान तो और थोड़ा मसूरा चढ़ा दिए और मस्का मारे और चढ़ा दिए और नारद जी और फूल गए, ये हुआ ना, बाकी पापा और भैया कुछ काम नहीं करते नहीं, ये देखिए ठाकुर जी कितने हम प्रशंसा करते, हाँ भगवान को भक्त का भक्ति तो प्रसन्न है लेकिन भक्त का जो अभिमान कभी सहन नहीं कर सकते, इमीडिएट भगवान चुकन्ना हो जाते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया, महाबीमारी आ गई, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो भगवान देख लिए तो भारी अभिमानी हो गया, गर्व आ गया उसके मन में, गर्व भगवान कभी सहन नहीं करते हैं, तो तुरंत ऐसे उनको बढ़ावा दिए, बोले आप देखो नाराज जी आप तो बहुत काम विजयी है, ऐसा काम करो, हमारा काम है ना, बताओ बताए आपके तो काम का ना, ऐसा करो रे बड़ा जरूरी काम है इम्पोर्टेंट हो और आप इतने सक्सेसफुल है, थोड़ा जा करके कर सकते हैं, भगवान कुछ काम देकर भेज दिए, जो रूट में भेजे वो रूट में एक जा नारद चल पड़े बड़े खुशी में अभिमान, जाते समय वो रास्ता में एक सिटी आता है, वो सिटी में पास कर जाना था, उस सिटी में फेस्टिवल चल रहा था, नारद जी देखे वो हाई फाई फेस्टिवल चल रहा है, क्या बात है, चलो फेस्टिवल में देखने के लिए गए, तो फेस्टिवल क्या था, वो सिटी का जो किंग था उनका जो प्रिंसेस थी उनके स्वयंवर चल रहा था, वो विश्व सुंदरी थी, विश्व मोहिनी, अब उनके सिलेक्शन फेस्टिवल था ना, उसका स्वयंवर सभा था, और स्वयंवर सभा में किस प्रकार किया जाएगा वो होगा उसमें होने वाला था, तो नारद जी गए सुनकर के बोले कैसा है कैसा है, उनके मन में लगा थोड़े जान करके वो पैलेस में गए, तो राजा देखा नारद जी उनको बड़े वार्म वेलकम किया, बुला करके बोला बोले कैसा है, बोले राजा बोले देखो नारद जी आप तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, आप थोड़ा हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटी का ऐसे ऐसे शादी होने वाला है, स्वयंवर में बुला रहा हूँ अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा आपको आशीर्वाद दीजिए कुछ कीजिए ना सर, मैंने डेट फाइनल हो रहा है आज, तो इस डेट में करूँगा, सब इन्विटेशन स्प्रेड आउट हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, ईमेल अगर सब भेज रहा हूँ, तो नारद जी बोले भाई आपकी बेटी कौन है थोड़ा देख तो सही, आशीर्वाद उनको दे दूँगा डायरेक्ट हो जाएगा हमारे साथ, तो उन्होंने अपने बेटी को बुलाया विश्व सुंदरी को राजा ने, अब जैसे विश्व सुंदरी आया और वो कोई नहीं थे, भगवान स्वयं ही विश्व सुंदरी बन करके हम प्रकट हो गए थे, हाँ बाकी और कोई काम देवे थोड़ी है, अब जैसे आ गए नारद जी बैठे बैठे उनका हाल खराब, आप देख करके मन में सोचे, राजा को बोले अब वरदान देना भूल गए, राजा को बोले डेट कौन सा है, किस डेट फाइनल क्या ना, ये डेट को इस महीना का डेट, नारद जी मन में विचार करते हैं अब किसी ना किसी प्रकार से अगर जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना है, अगर उसको शादी नहीं किया तो जीवन अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण जीवन, ओहो इतने सुन, अब विचार करके राजा से बोले, अब बोले वो क्या करूं, देख लिया, अब बोले कि डेट पूछ लिए उनसे, बोले अभी 10 days ही मेरा हाथ में, अभी मैं बाद में काम करूँगा, पहले भगवान के पास जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं पूरे विश्व से बड़े बड़े सुंदर राजकुमार सब आएंगे, कोई जीत ना ले उसको, हम मेरे सुंदरता में तो ब्रह्मचारी ठहरा, पता नहीं कोई सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो जाता हूँ भगवान से अपने रूप उधार से लाऊंगा, है ना नहीं, उनके रूप उधार से लाऊंगा, तो इस डेट के लिए केवल चाहिए, और सिलेक्ट हो जाए फिर उनको वापस कर दूंगा, फिर एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाए फिर तावना होकर रहेगी, तो नारद जी ने फटाफट उन्होंने डेट फेट पूछ करके, अरे बोले आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दूंगा मैं आ रहा हूँ, जाने मैं आऊँगा निश्चित उस डेट में, और नारद जी ने अब काम धंधा छोड़ करके अपने फिर वापस गए वैकुंठ जाके भगवान के पास, भगवान बोले नारद जी क्या आगे कम ना, एक जरूरी बात है ना बताओ ना, देखिए प्रभु जी सारा जीवन आपके भजन मैंने किया ना, मैं मना थोड़ी करूँ, आपने किया आप तो बहुत, लेकिन कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाह रखा था ना, बिल्कुल आप तो अनन्य भाव से करते, कुछ नहीं आशा किए थे, लेकिन आज मेरे मन में एक छोटा सा आशा है, आप चाहते हैं उसको एक मांग मरा है पूरा करने ना, बताओ आप तो ऐसे कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते आप, हेतु की भक्ति करते हैं, लेकिन आज कोई हेतु कोई आशा है तो बताओ ना, बस प्रभु विशेष कृपा कीजिए आपका, हम कृपा करूँगा, बताओ तो क्या है ना, इसे बताने किस चीज़ के लिए? बोले मुझे बस आज के आज भर के लिए आपके जो हैंडसम चेहरा है ना, आपके रूप चाहिए, मेरे रूप चाहिए ना, हे हरी आपके रूप चाहिए आज भर के लिए, मैं शाम तक वापस कर दूंगा आपको, है शाम तक वापस कर दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले बात बस इतना ही है, बस इतना ही, और बाकी कुछ आगे नहीं बताए क्या उनका प्रोजेक्ट है। अब भगवान बोले कोई बात नहीं, लेके जाओ। अब हरि मांगे थे रूप, हरि के रूप, और भगवान नारद जी जानते हैं कि हरि तो विश्व में कोई भगवान की सुंदरता के समान हो ही नहीं सकते, करोड़ों कंदर्प भी उनके समान नहीं हो सकता। तो भगवान हरि के रूप मांग लिए। ये हरि शब्द का अर्थ अनेक होता है, हरि अनेक अर्थ बोध क्या, हरि शब्द का अर्थ बंदर भी है, भालू भी है, सांप भी है, शेर भी है, हरि भी है, सब कुछ है। तो भगवान ने एक बिफिटिंग रूप उनको दे दिए थे। अब इतने जल्दी से वो तो ड्रेसिंग टेबल में गए नहीं, मिरर तो दिखे नहीं थे, वो भगवान से बातचीत हो, भगवान बोले यस हैव इट, तो लेकर गए और सीधा देखे कि लेट हो रहा है, इतने दूर से जाना है, जाकर जस्ट स्वयंवर शुरू हुआ था जाकर पहुँच गए। पहुँच करके एरेना में बिल्कुल सबसे फ्रंट वीआईपी सीट में जाकर बैठे। हाँ अब सभी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, हजारों लाखों एक से एक सुंदर राजकुमार सब आए हुए हैं, और विश्व सुंदरी माला ले करके चली। नारद जी तो फ्रंट सीट में बैठे हुए, तो आए मेरे पास ही आएगा, और कोई मेरे सामने सुंदरता को नन चैलेंज्ड है, मैं हरि का रूप लेकर आया हूँ तो निश्चित मुझे ही वरण करेगी, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो जैसे माला लेकर चली, अपने इसे सर उठा के इसे मुंह कर देते, तो मैं इधर ही हूँ, इधर उधर कौन देख रहा है, लेकिन वो देख ही नहीं रहा उनको। ओ भाई आड़ चित देखे, बोले देखता भी नहीं, वो हल्ला करने लगे, देख ही नहीं रहे किसी ने, आवाज़ किए बिल्कुल ऐसे ऐसे किए, लेकिन वो देख ही नहीं, पास करके चले गए। बड़े दुखी हुए, बोली हरि के रूप में लेकर आया, और कौन है इस सभा में मेरे से ज्यादा, वो क्यों इधर जा रही है? अब वो तो जा रही है, तो उनको बेचैन हुआ नारद जी, बोले ये कैसे हो सकता है? तो उनके बाजू में बैठे थे दो, बोलते हैं शंकर जी के लहर थे जो भी थे, बैठ गए। बोले अरे कहाँ की ऐसी उतावली हो रहा है, क्यों मरे रही हरि का रूप ले, क्या देखने मेरे सुंदरता देखने रहा, नहा दिख रहा है इसलिए तो हम हंस रहे हैं, क्यों हंस रहा है तुम्हें? ना बोले तो ऐना तो पास में है ही नहीं, पानी गिलास रखा उसे थोड़ा देख लो। तो पानी में झांक लिए, बाप रे बाप, खतरनाक बंदर के रूप था उनका, काली मुख वाले बंदर, उसके और कोई देखेगा माला पहनाने के लिए? और ये नारद जी का सारे डाउन हो गया मीटर, ये क्या हो गया, भगवान ने मेरे साथ इतने धोखा किए, मैंने जीवन भर भजन किया था, उनका कुछ नहीं मांगा था, थोड़े समय के लिए उनका रूप मांगा था, ये क्या बंदर बना दिया, अरे मैं जैसा था नहीं नॉर्मल ऐसा ही ठीक था, कुछ तो हद तक पॉइंट मिलता, ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, अरे मैं क्या अब फ्रंट सीट में आकर बैठा हूँ, इतने बेइज्जत महसूस किए, अरे बाप रे, मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। अब सोच सकते ना आप, बिल्कुल हजारों वीआईपी के बीच में जाकर फ्रंट सीट में एक बार एक करके बैठा, आपको पता नहीं कि हुआ रही हूँ। आप जब सारे अपमानित होने के बाद लोग से हंस रहे हैं, आपको पता चला कि हमारा ये दशा है, ओ हो इतने काला तो मुंह पहले से था और भी शरीर काला हो गया, सब इतने डाउन हो गए, अब अपमानित इतने महसूस करके चले सीधा वैकुंठ को, बोले इतने गुस्से हो गए, बोले टू मच। और वैकुंठ जाकर बोला भगवान को, अरे नहीं देते तो नहीं देते, ऐसा क्यों की मुझे चीटिंग की, मना कर देते हम तो ऐसे था, भूल करके ऐसा कर दिए, ऐसे कुरूप कर दिए। और वो विश्व वाहिनी को भगवान लेकर के चल पड़े थे। अब नारद जी गुस्से में हाई स्पीड में गए, दौड़ कर जाके देखे कि विश्व भगवान ने कंटेस्ट में भी आए थे, और विश्व वाहिनी उनको माला था भगवान लेकर, अरे जब सामने देखते कि वो जिनके लिए गंडे थे वो तो वहां बैठी माला वहां डाल करके, बोले अच्छा आप मुझे बताए भी नहीं। नारद जी सोचते मैं नहीं बताया था, उनको नहीं पता, बोले उनको पहले से पता था, अब इतने क्रोधित हो गए नारद जी, क्रोधित होकर के उनको संभाल नहीं पाए, अभिशाप देने लगे भगवान को अभिशाप देना। बोले आपने मुझे इस सब जीत किया, उनके सामने भरी सभा, जैसे मैं तड़पता हूं उनके लिए, आपको भी तड़पना पड़ेगा एक स्त्री के लिए। ले थैंक यू नारद जी के मिट्टी डाल, थैंक यू ना, यस बस इतना ही तो है ना। बोले क्यों प्रभु? बोले मुझे जिस बंदर बनाया था, अभी बंदर ही आपको मदद करेगा, तभी आप जैसे तड़प रहे होंगे। बोले वो तो बहुत और अच्छा है। बोले क्यों? आप इस परेशानी को उठाने के लिए बड़े आसान से राजी हो गए, इतने तड़पेंगे बंदर की सहायता लेकर के, उसके लिए राजी हो गए आपने मेरे साहब को स्वीकार करना? हाँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुझे बचाना था मुझे। महाराज जी तभी रियलाइज किए। महाराज जी कहते हैं बाद में, बोले हो प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं, मैं मूर्ख समझ नहीं पाया था, मैं तो इसी फेर में था, आपको बता भी नहीं था जो कर रहा था चक्कर, लेकिन आपने ऐसे दयालु हुए, अंतर्जामी है, पॉइंट पर मुझे ऐसे ही रूप दिए कि मैं बच गया, नहीं तो आज तो मेरा क्या हाल होता ना जी से। तो इस प्रकार अगर कोई भगवत शरणागति में रहे तो अगर कभी भी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो भी जाता है तो भगवान ऐसे चाल चलते हैं, वो निकल कर आ जाता है, बच जाता है। नहीं तो अपने बलबुते पर अगर हम चले तो क्या हमारा गति होगा। तो नारद जी स्वयं एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए इसे लेसन देते हैं प्राचीन वर्ष को जा करके, बुद्धि की उपयोगिता के ऊपर इस प्रकार से शिक्षा केवल नारद ही दे सकते हैं, क्यों ही भुक्त भोगी है, सुपर एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास टेक्निक है। तो इस प्रकार से पूरे पुरंजन उपाख्यान आप तभी शुरुआत किए हैं, आगे पढ़ के जाएंगे कैसे कैसे काल्पनिक कथाएं बोलते हैं, बिल्कुल लगेगा कि जैसे हम सचमुच और सचमुच प्रत्येक मनुष्य का यही हाल है। सब मनुष्य अपने जवानी में यही चक्कर में फंसे रहता है, फंस करके फंस जाता। तो इसलिए इस समय में इस पुरंजन उपाख्यान इतने कड़वा दवा है, वो काम करता है। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। आपके जीवन में तो इसीलिए आपके पुरंजन उपाख्यान पढ़ना पड़ेगा। नारद जी आपको तो बताया नहीं ना, पुरंजन को बताए थे आप, इसलिए भागवत जो देखा गया उसको पढ़ो समझो तो परिवर्तन आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे बद्ध जीव के परिवर्तन लाने के लिए तो नारद जी ने चार चैप्टर उपाख्यान बताए, है ना। और कुछ? यस अच्छा, आप जा रहे हैं कथा में? अच्छा बोलिए।
और उनके मुख का दर्शन लिया तो कि उनका मुख
तीसरा हृदय धरि मैं तुम्हार चरण कमल, नयन देखी मैं तुम्हार चंद्र बदन, मुखे उच्चारी मु सदा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, ऐ मत इच्छा मोर छाड़ी मु प्राण। तीसरा कंडीशन था कि श्री मुख में, मेरे मुख में आपके श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम को उच्चारण करते रहूंगा, इस नाम के साथ मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद की।
भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की।
ये सूखा सूखा सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ा बहुत चीनी डालना पड़ता है रसाले। क्या करूँगा, इन्हें बाका नहीं तो सोएंगे।